रात्रि 9 से 10 आप सबों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हमारा यही प्रयास है कि भाषा, साहित्य, देश प्रेम आपके साथ बना रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो सलाम नमस्ते पर कवितांजलि कार्यक्रम। पिछले रविवार को मित्रों हम लोगों ने बात की थी, एक परिचर्चा हुई थी जो भारत से लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि आए थे डॉक्टर सुरेश अवस्थी, गजेंद्र सोलंकी एवं डॉक्टर सुनील जोगी, उन सबों से सीधा फोन से यानी कि दूरभाष से हमारी बात हुई थी, परिचर्चा हुई थी स्थानीय यहीं पर, और उस संदर्भ में काफी बातें हुई कि भारत में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे भाषा और साहित्य का प्रेम अमेरिका में हम लोग बढ़ा सकेंगे। इस तरह की बातों पर हम फिर चर्चा करेंगे। और आज बता दूं कि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डैलस शहर के स्थानीय कवित्री श्रीमती वीणा शर्मा। तो वीणा जी, आपको आज इस स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा। हर बार मैं आपकी आवाज सुना करती थी, इस कार्यक्रम को सुना करती थी, आज मैं आपके सामने बैठकर सुन रही हूँ।
तो चलिए मित्रों, वीणा शर्मा से भी हमारी बातें होंगी, कविताएं भी होंगी। आपको एक बात बताते चलूं कि आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ युवा वाणी को प्रस्तुत करेंगे, और ये युवा वाणी अमेरिका से नहीं मित्रों, अपने देश भारत से होगी। दिल्ली में एक समूह है युवाओं का जिसका नाम है हिंद युग। इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है, सारे युवा मिलकर हिंदी का प्रचार प्रसार अपने कंधों पर ले लिया है। तो वो क्या कहते हैं, उन्हीं की वाणी थोड़ा हम सुनते हैं, फिर हम सीधा संपर्क करेंगे दिल्ली और उन्हीं में से एक युवा रचनाकार से बातचीत करेंगे जिनका नाम है निखिल आनंद गिरी। तो चलिए हिंद युग क्या कहते हैं ये युवा, जरा सुनते हैं हम लोग।
मैं युग्म तुम्हारी भाषा का, हिंदी की धूम लाशा का, मैं युग्म एकता की संभव, हर ताकत की परिभाषा का।
हाँ, बहुत कठिन होगा लिखना पत्थर पर अपने नामों को, होगा थोड़ा मुश्किल करना अनहोनी लगते कामों को, पर वही सफल होता है जो चलने की हिम्मत रखता है, गिरता है, घायल होता है, पर फिर भी आगे ही बढ़ता है।
मैं युग्म हिंद की अभिलाषा का छोटा सा कोना भर दूं, तुम एक पुष्प बस दे जाओ, मैं भारत का दोना भर दूं।
जी हाँ, हिंद युग्म यानी हिंदुस्तानियों का युग्म, जो कि हिंदुस्तान में विश्वास रखते हैं, भारत नामक विचार में विश्वास रखते हैं, हिंदी भाषा में विश्वास रखते हैं, ऐसे हिंदी प्रेमियों का समूह जो कि केवल हिंदी की बात नहीं करते बल्कि हिंदी का प्रयोग करके, प्रयोग को प्रोत्साहित करके इसकी असली सेवा करते हैं,
जिन्हें आज पर भरोसा है, जो हिंदी की दुर्दशा पर रोने से ज्यादा इसे बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं।
आइए जानें हिंद युग के उद्देश्य क्या क्या है।
हिंदी भाषा को आधार बनाकर राष्ट्र निर्माण की कोशिश,
हिंदी साहित्य की खोई गरिमा लौटाना, इसे जनप्रिय बनाना,
लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया का परिचय उन्हीं की भाषा हिंदी में कराना,
युवा प्रतिभाओं को जो कि दबी है, उपेक्षित व हतोत्साहित है, उनको एक जगह जमा करके उनका प्रोत्साहन करना,
धन के अभाव में न पढ़ पा रहे ग्रामीण बच्चों को शिक्षावृत्ति जैसे उत्प्रेरकों से मदद करना, हिंदी साहित्य को कला की हर विधा से जोड़ना, जैसे चित्रकारी, संगीत, फिल्म निर्माण, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि।
हिंदी साहित्य का बाजार खड़ा करना ताकि लिखने वाला भी आर्थिक रूप से सबल हो सके, हिंदी के लिए पाठक पैदा करना।
वर्तमान में हिंद युग कविता, कहानी और बाल साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा संगीत को माध्यम बनाकर इंटरनेट पर हिंदी यानी देवनागरी के प्रयोग को भी प्रोत्साहित करता है।
आइए जानें हिंद युग के प्रमुख आकर्षण क्या क्या हैं।
हिंद युग यूनी कवि एवं यूनी पाठक प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है, जिसमें कवियों से महीने की पहली तारीख से 15वीं तारीख तक अप्रकाशित कविताएं आमंत्रित की जाती हैं। शीर्ष 10 कवियों को नगद इनाम, पुस्तकें व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। इनकी कविता पर हिमालय के पेंटर चित्र बनाते हैं।
ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें पाठकों को भी पुरस्कार दिया जाता है। हर बात के लिए एक ही शर्त होती है, हिंदी देवनागरी में लिखना। महीने की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक जिस पाठक ने गहनता से हिंद युग्म को पढ़ा होता है, जो अधिक से अधिक टिप्पणियां करता है, उसे यूनिक पाठक चुना जाता है और उसे नकद इनाम, पुस्तकें एवं प्रशस्ति पत्र पाने का अधिकार होता है।
इसके अलावा
मित्रों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के युवाओं का समूह हिंद युग, जिसकी बातें कुछ हो रही थी। इन्हीं में से एक युवा रचनाकार निखिल आनंद गिरी से हमारी बातें होंगी, तो चलिए देखते हैं कि हमारा संपर्क निखिल आनंद गिरी से हो पाए कि नहीं। अभी बातें करते हैं। तो निखिल, आप हमारी बातें सुन रहे हैं?
जी आदित्य जी, आपको नमस्कार और रेडियो सलाम नमस्ते के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
तो सबसे पहले तो मैं कवितांजलि की ओर से आपका इस डायरेक्ट शहर में स्वागत करता हूं।
जी शुक्रिया।
और हमारे साथ बैठी हैं यहाँ की स्थानीय कवित्री श्रीमती वीणा शर्मा जी।
नमस्कार
वीणा जी, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार निखिल आनंद जी, अभी आपकी आवाज सुनी और बहुत ही अच्छा लगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो निखिल, ये बताएं कि ये जो समूह आप लोगों ने हिंद युग बनाया है, ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
जी आदित्य जी, ये कोई दिल्ली का समूह नहीं है, ये पूरे हिन्दुस्तान का समूह है।
वाह।
और हर उस व्यक्ति का समूह है जो एक हिंदुस्तान में विश्वास रखता है, जो इस बात में विश्वास रखता है कि भाषा का विकास होना चाहिए। और हम हिंदी भाषा से जुड़े लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा को तकनीक से जोड़ा जाए और कला की हर विधा से जोड़ा जाए, जैसे संगीत, चित्रकला, डॉक्यूमेंट्री निर्माण वगैरह वगैरह। तो पिछले साल 25 अगस्त 2007 को हम कुछ युवा जो इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे थे, वो सौभाग्य से एक साथ इकट्ठा हुए और तब इसकी परिकल्पना रची गई। और आज हमारे साथ हिंदुस्तान के हर कोने से इसमें युवा जुड़े हैं, और हिंदुस्तान ही क्यों, विदेश से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, कई लोग और जुड़े हैं।
तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि भाई युवा रचनाकारों ने अपने कंधे पर ये भार लिया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार और भाषाई राह को जगाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो निखिल, आप बताएं कि कविता आप कब से लिखने लगे और कविता में आपकी अभिरुचि अनुराग कब से है?
कविता में जब स्कूल में था तब से लिख रहा हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं, लेकिन तभी से शायद एक शौक लग गया समाज को देखने का, समाज को अपने ढंग से देखने का। और तभी से छिपछिपाकर तकिए के नीचे कलम छिपाकर, कागज छिपाकर तब कविताएं लिखता था, और कुछ दिनों के बाद चोरी पकड़ी जाती थी और पिताजी समझते थे कि बेटा कवि होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये शौक और भी बढ़ता गया और लोगों ने प्रशंसा की, लोगों ने तारीफें की शब्दों की, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना इस विधा को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और तभी से मैं शायद 9वीं कक्षा में या 8वीं कक्षा में पहली बार मैंने अपनी रचना लिखी और अखबार में वहां प्रकाशित होने लगी। लोग तब जानते थे, मोहल्ले वाले तब जानते थे कि अच्छा इस मोहल्ले का लड़का, या पिताजी तब जानते थे कि इस घर का लड़का कवि हो गया।
तो कहते हैं कि भाई कविता मनोरंजन या मनोविनोद का साधन नहीं है, बड़ी कविता वही जो मनुष्य और भूमि को सुंदर बना दे। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि कविता जो है पथ के प्रदीप बन पाते हैं जीवन में लोगों के?
जी बिल्कुल, जैसे हमने अगर भाषा की बात की है तो कई कविताएं हमने खुद भी भाषा पर रची हैं। एक हिंदी पर एक विशेष कविता अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा।
मैं चाहूंगा पहले कुछ मुक्तक सुनाएं, उसके बाद आपकी कविता पर हम लोग आएंगे।
जी बिल्कुल, अभी अमेरिका में इस वक्त रात का समय होगा
जी,
तो क्यों ना एक छोटे से मुक्तक से शुरुआत की जाए जो रात पर ही आधारित है।
जी
जी, ऐसा है कि रात किसी ने सिगरेट पीकर शहर के चेहरे पर फूकी थी।
वाह वाह वाह, क्या बात है
जी। रात किसी ने सिगरेट पीकर सुबह के चेहरे पर फूकी थी, सुबह से कोहरे में लिपटी है सारी दिल्ली।
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना है
जी। शुक्रिया। और भी कुछ मुक्तक हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊँ।
जरूर जरूर, स्वागत है निखिल
जी। गांव से खत आया है पिताजी के पांव में चोट है, माँ एक महीने से नहीं खाती दिन का खाना, बेटा शहर में तलाश रहा है दो बूंद आंसू।
वाह 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 वाह, क्या बात है।
अगला मुद्दत है, सड़क पर जल उठी लाल बत्ती, सड़क पर जल उठी लाल बत्ती, एक भूखा मासूम हाथ काले शीशे के भीतर घुसा, भीतर बैठे कुत्ते ने काट खाया हाथ।
वाह।
कब कैसे पेश आना है, खूब समझते हैं एलीट कुत्ते।
सही कहा, बहुत
अच्छा। एक और छोटी सी घटना कि खचाखच भरी बस बुरके में पसीने से तर बतर लड़की, मैं सोचता हूँ ग्लोबल वार्मिंग पर बहस जरूरी है।
बहुत सुंदर
जी, शुक्रिया।
तो निखिल, आप अपनी कोई कविता प्रस्तुत करें, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं भाई आपकी कविता का।
एक कविता तो पहले छोटी सी हिंदी की उन्नति को लेकर ही सुना दूं, उसके बाद फिर एक और कविता सुनाऊंगा।
अवश्य अवश्य
जी। रुधिर की बहने दो अब धार, स्वर गुंजित हो नभ के पार, किए पद ताल भाषा के सिपाही आए, खोलो खोलो तोरण द्वार। बहुत सा हौसला भी होश भी जुनून चाहिए, हिंदी को खून चाहिए। गुलामी की व्यवस्था हम समझने अब लगे हैं कम, तभी तो एक परदेसी जबां लहरा रही परचम, कि जो रच दे इबारत अब वही मजमून चाहिए, हिंदी को खून चाहिए। हुई है साजिशें घर में, दिखे हैं मीत लश्कर में, पड़ी है आस्था घायल अपने ही दरो घर में, उठो आगे बढ़ो अब हिंद को सुकून चाहिए, हिंदी को खून चाहिए।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी
जी। तो अभी कविता जो मैं मीडिया की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हर, जैसा कि आपने कहा कि जो कविता होती है वो प्रदीप्त करती है जिस राह पर कवि चलता है या जिस राह पर जीवन यात्रा होती है, तो उसी से जुड़ी हुई ये कविता सुनाता हूँ आपको।
कविता जो है वो जनहित के लिए होती है और जन भावनाओं को लेकर ही उपजती है कविता।
तो जी, हम जो महसूस करते हैं बिल्कुल वही लिखते हैं।
चलिए, स्वागत।
कविता का शीर्षक है, मैं मीडिया का एक छात्र।
हाँ जी
जी, कविता है कि माँ की बासी रोटी से भी फीका खाकर खुश होने के अभिनय में टिप देकर जाना, घर का चौका छूटा होटल की मेजों पर, सीख रहा हूँ मुंह के भीतर चम्मच से चावल सरकाना।
वाह 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 वाह।
बाबूजी का आधा वेतन कार्ड घुसाकर जेब में भरना, गर्लफ्रेंड के साथ जरा सी दूरी पर भी ऑटो करना, और बहुत कुछ सीख रहा हूँ।
अति सुंदर।
तो शुक्रिया। लगता है कि एक युवा जब शहर आता है और क्या क्या चीजें करता है, मैं अपने अनुभव बांट रहा हूँ कि सीख रहा हूँ नया ककहरा जादू मंत्र, माँ की गाली का अंग्रेजी रूपांतर, सीख रहा हूँ बिस्तर की सिलवट को कैसे खबर बनाए, सीख रहा हूँ माँ कैसे बाजार में आए, टोने टोटके सांप भूत मेरे अध्याय, नया दौर है भूख गरीबी भाड़ में जाए, और बहुत कुछ सीख रहा हूँ।
तो निखिल, आपकी रचना बड़ी अच्छी लगी, और मैं चाहूंगा बीना शर्मा जी आपको कुछ बातें निखिल से पूछनी है।
जी बीना जी,
एक बात तो निश्चित है कि हिंदी का भविष्य आपने सुरक्षित कर दिया है।
जी शुक्रिया बीना जी।
एंड जिस क्षेत्र में भी युवा आगे आए हैं वो क्षेत्र विकास की चरम सीमा पर पहुंचा है, तो हिंदी का तोरण द्वार आपने खटखटाई दिया है, तो आगे का मार्ग तो प्रशस्त हो ही जाएगा। तो अब मैं आपसे सवाल ये करती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना ज्ञान कैसे बटोर लिया, कैसे समेटा?
ऐसा है कि भारत तो कवियों की भूमि है और हम हिंदुस्तान की मिट्टी में रचे बसे हैं, तो यहाँ तो आदमी समाज की नब्ज पहचानना बचपन से ही शुरू कर देता है, और ऐसा नहीं, शब्द के शिल्पी तो यहाँ हर कोई है। आप तो किस्सा गोई या फिर कविता का लेखन ये तो हमारे खून में रचा बसा है, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी कोई कविताएं नहीं लिखी है। अभी तो हिन्दुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति कवि है।
तो निखिल ये बताएं कि हिंद युग की आगे की योजना क्या है, क्या सपने हैं जो आप लोग करना चाह रहे हैं?
जी हम एक बिल्कुल एक संस्था और एक समूह की तरह काम करना चाह रहे हैं और भारत के हर कोने में हर छोटे छोटे कस्बे में हम चाहते हैं कि भारत का हर आम आदमी तकनीकी रूप से सक्षम हो सके। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जब इंटरनेट पर या जब कंप्यूटर पर अपना हाथ रखे तो अपनी भाषा में रखे, हिंदी में बात करना जाने और जब कीबोर्ड दबाए तो वो अपना नाम हिंदी में लिख सके। और इसके लिए हम मुफ्त प्रशिक्षण भी देते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर हमारे पास कोई फोन आता है कि हम हिंदी में टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना सीखना चाहते हैं, तो हम उसको मुफ्त प्रशिक्षण भी देते हैं। तो हम कई कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा हम कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। गरीब बच्चों के उत्थान के लिए हमारे दिमाग में कई योजनाएं हैं। हम कविताओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहे हैं, कविताओं पर म्यूजिक एल्बम निकालने की सोच रहे हैं। हमारे पास, हमने पहले ही कहा कि हम साहित्य को कला की हर वजह से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सारे जो युवा रचनाकार हिंद युग से जुड़े उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपकी यह वार्ता डैलस शहर में रेडियो पर सुनी गई, साथ साथ इंटरनेट पर अमेरिका कई शहरों में लोग सुन रहे हैं, और मुझे आशा है कि भारत में भी आपके मित्र सुन रहे होंगे।
जी जरूर। तो मुझे तो लग ही रहा है कि मैं अमेरिका बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल हिंदुस्तान के किसी अपने साथी से बात कर रहा हूँ।
चलिए, मंगल शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि पुनः आपसे वार्ता कभी हो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी।
जी धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे, सीधा हमारी बातचीत हो रही थी दिल्ली, जहां पर निखिल आनंद गिरी जी से बात हो रही थी। तो देखता हूं, एक मिनट, हमारे कोई लिसनर है, कोई कॉल कर रहे हैं। रेडियो सलाम नमस्ते।
हाँ जी, मेरे पास एक शेर था।
हाँ जी।
दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे।
चलिए, बहुत खूब, थैंक यू। तो मित्रों, हमारी बातचीत अभी हो रही थी निखिल, जो कि दिल्ली से थे, और बड़ी अच्छी बात कही। और कविता की जब बात आती है तो सच में कल्पना ईश्वर की